ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर टाइटल दिया है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ज्ञान सूर्य भी हो, ज्ञान चंद्रमा भी हो, ज्ञान सितारे भी हो, क्योंकि ज्ञान सागर आकर के तुम बच्चों को ऐसा बनाते हैं। वो धरती के सूर्य चांद और सितारे अलग हैं, लेकिन तुम बच्चे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कितने लक्की सितारे हो, क्योंकि बाप तुमको कितना बड़ा खजाना देते हैं और निराकार बाप आकर के खजाने की, रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। और बाबा ने कहा निराकारी खाने इतनी है कि जितना चाहो हीरे जवाहरात, ज्ञान के हीरे जवाहरात अपनी थालियों में भर भर करके बाबा दे रहे हैं बच्चों को। तो बाबा ने ये भी कहा, बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चों को ज्ञान और योग के द्वारा सेवा करनी है, प्रजा भी बनानी है और राजधानी में भी जाना है। बाबा ने कहा कि अच्छा ज्ञान योग से कई सेवा नहीं कर सकते हैं, तो स्थूल सेवा करो, क्योंकि स्थूल सेवा के भी बहुत मार्क्स हैं। कई बच्चे तो क्या समझते हैं बस भाषण करना है, योग कराना, ये सेवा है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं स्थूल सेवा के भी नंबर 7 में ऐड होते हैं, तो उसके भी बहुत बड़े मार्क्स मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो आत्मा रूपी दीपक का जगता रहे, उसकी जोत जो है वो तुमको खुद ही जगानी है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करने। दीपक कौन सा? आत्मा रूपी दीपक। मीठे बच्चे तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा गुप्त पुरुषार्थ है और गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल ही जाएगा। बोलते रहेंगे तो वो वर्षा जो मिल रहा उसको नहीं पा सकते ना, तो अंतर्मुख होकर रहेंगे तो बाबा से मदद भी मिलती रहेगी। अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते हो तो कर्मणा सेवा करो। कई कई तो ऐसे होते हैं कर्मणा सेवा को करना ही नहीं चाहते, कितना कहो ना तो भाग जाएंगे, अवॉइड करते, लेकिन जितना कर्मणा सेवा करेंगे उतना अंदर से शक्ति भी मिलती है। अगर नहीं कर सकते हो तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज का गीत है, निर्बल से है लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर को अपने ऊपर विचार सागर मंथन करना होता है। कहा नहीं, दिए कितना छोटा है, तूफान इतना बड़ा होता है तो भी दिए की जीत हुई, तो बाबा कहते इस पर भी विचार सर मंथन करना। ये तो बच्चे जानते हैं मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं, तो फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, वो मरने के बाद दीपक जलाते हैं, तो बाबा कहते आत्मा रूपी दीपक अभी जलाओ क्योंकि तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते, कौन अच्छा पुरुषार्थ करेगा जो माला में आने वाले, पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा तो इस माला में नहीं आती है। पुरुषार्थ करनी चाहिए कि हम विजय माला में कैसे बाबा ने कहा पहले जाए, एक विजय माला में जाए बाबा ने कहा पहले जाए, मीन्स पहला नंबर या नसीब का नंबर हो। पुरुषार्थ करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले जाए, कहीं माया बिली तूफान लगाकर विकर्म न बना दे जो दीवा ही बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए, योग के साथ ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी, अब आत्मा के दीपक की संभाल तो हर एक को आप ही करनी ना, दूसरा थोड़ी आए, दूसरा तो गाइड कर देगा लेकिन संभाल तो खुद करनी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल खुद करनी है, अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती है तो बहुत संभाल करते हैं, कहां जोत कम नहीं हो जाए बुझ ना जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। अब पुरुषार्थ को तीर करने के लिए क्या करना है, योग बल की ताकत चाहिए, योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं, देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं, तो हिसाब में जोर लगाते हैं, कोई किस सब्जेक्ट में कमजोर होता है कोई किस में होता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना, तो फिर वो मेहनत करते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों को आशीर्वाद मिलती है। आप सबको पता है ना भोली दादी सारा समय किचन और स्थूल सेवा करती थी, बाबा कहते कितना भी हो, रात का टाइम हो दिन का टाइम हो कोई भी आ जाता था, अब कभी कभी रात का लेट नाइट होता था कोई आता था, दादी हमको भोजन करना, हमने भोजन नहीं किया, तो दादी कहती बैठो बैठो 5 मिनट लगेगा, फटाफट कड़ी बना देती थी, चावल बॉयल कर देती थी, गरम गरम खाना खिलाती थी। और बाबा हमेशा कहते थे देखो ये बच्ची ज्ञान योग नहीं करती, योग करती है, ज्ञान का कम है लेकिन इसकी स्थूल सेवा के इतने जबरदस्त मार्क्स हैं तो ये भी बहुत ऊंच पद पा सकती है। तो ऐसे बाबा हमेशा कहते थे स्थूल सेवा से भी बहुत मार्क्स ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, कई बच्चे ज्ञान की सर्विस नहीं करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते, बिजनेसमैन है किसी के 6 दुकान है किसी के 8 दुकान है किसी का 1 होता है, एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते हैं, कोई में कम ग्राहकी और कोई में जास्ती ग्राहकी होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है, सुनो ध्यान से, कौन सा समय, तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ तो बाबा के घर में आराम से रात को योग भी करते हैं लेकिन बाहर सेंटर्स पर जाते हैं कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, रात तक चलते रहते हैं, देर तक चलते हैं, बहुत अच्छा सेवा करते हैं। तुम्हारा भी एक दिन आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सबको पता चलेगा ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। किस लिए? अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। देखो बाबा ने पहले से आप सबको इमर्ज कर लिया। बाबा के टाइम पर तो बहुत थोड़े बच्चे थे, बाबा ने कहा बहुत आएंगे। अभी हम देखते हैं शांतिवन में बाबा के टर्न में कितने बच्चे आते हैं, और वो भी नंबर अलॉट करना पड़ता। अब इतनी संख्या इससे ज्यादा नहीं आओ, अब इतनी संख्या इससे ज्यादा नहीं आओ, तो बाबा ने तो पहले ही कह दिया था। और बाबा जरूर वतन से बच्चों को देख भी रहे हैं। बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती। कहीं पर कोई चीज अच्छी मिले, सस्ती मिले, सबको बोलेंगे वहां जाओ वहां जाओ, वहां अच्छी भी मिलती है, रीजनेबल भी है, तो सब लोगों को गाइड करते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान कितना अच्छा मिलता है, तो एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। बाबा कहते फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो कि राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, तो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस के भी मार्क्स हैं, सभी को आशीर्वाद मिलेगी। कर्मणा सेवा करेंगे उनको भी आशीर्वाद मिलेगी, और करने वालों को भी उनकी आशीर्वाद मिलेगी, सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है, ये तो बहुत बहुत सस्ती खान है। अब बताओ जो सेवा नहीं करेंगे, यहाँ पर सेवा करते हैं तब तो बाबा के घर में आते हैं, बच्चे कितना सुख का अनुभव करते हैं। वो सब स्थूल सेवा होती है, चाहे मकान वाला है, चाहे खाना बनाने वाला है, चाहे उनकी संभाल करने वाला है, तो कितनी बड़ी सेवा करते हैं, तो उसका कितना सुख मिलता है बाबा के घर में एक एक को, तो उसकी भी जो हमारी आशीर्वाद मिलती है। ये तो बहुत बहुत सस्ती खान है, ये अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। आठ रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूजे सो पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम लक्की स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है, कौन से लक्की किनको क्या निश्चय, कौन होंगे लक्की स्टार। अभी तुम लक्की स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बन पड़े। नरक में तो कुछ है ही नहीं, मालिक क्या बनेंगे। अभी नरक के मालिक बन पड़े हैं, स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। जब स्वर्ग में है दूसरा शरीर लेते तो स्वर्ग में ही लेंगे। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है, दूसरी ओर सारी दुनिया, बाबा बता रहे हैं, देखो एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ तुम ब्राह्मण हो, दूसरी तरफ है सारी दुनिया कलयुग में। युग तो अलग अलग है, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे, क्योंकि जाना तो सबको इकट्ठा है ना। तब तक तो वो अपने अच्छे संस्कार से, बाबा कई बार बताते हैं अच्छे सर्विसेबल हैं तो अच्छे घराने में जाएंगे और उनके द्वारा भी कई प्रकार की सेवा कराएंगे, तो बाबा कहते संस्कारों अनुसार यहाँ जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शुद्ध है कलयुग के। ये नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है, तुम वी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो, और दूसरा टाइटल ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है, ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। कई कई सेंटर पर तो इतने भाई बहने आते, ज्ञान योग का सारा टाइम बहुत अच्छा चलता और कराने वाले अगर धारणा नहीं है कई, तो फिर उसके रिजल्ट भी अच्छी नहीं होती हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान भी संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा मीन्स उसका रिटर्न देने वाला बाबा है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसको दक्षिणा जास्ती किसको कम मिलती। यज्ञ भी रचते हैं जो मनुष्य बहुत अच्छे ब्राह्मण होते हैं उनका तो वैसे ही जास्ती मान सम्मान होता है, कोई साधारण होते तो उनको कम मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसको दक्षिणा जास्ती और किसको कम मिलती है। अब ये परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं जो कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बना रहे। दूसरे यज्ञ किस लिए करते हैं? बारिश आ जाए या आफतें मिट जाए या कोई न कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए यज्ञ करते हैं। और बाबा कहते हैं ये यज्ञ ऐसा है कैसा है कि हम ब्राह्मण से मनुष्य से देवता बनाते हैं। ऐसा और कोई यज्ञ होता नहीं जो कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा ने कह दिया कि पुरुषार्थ करना है ऐसा ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा राय भी देते हैं तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की श्रीमत से हम स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बने। जैसे आप जानते हैं ना भारत को स्वतंत्र कराने में जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया तो उनको वैसा स्टेटस मिला। तो बाबा कहते जितना जो स्थापना में अपना करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, जो स्थापना करेंगे वही जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीस्ट, अब टाइटल सुनो, तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीस्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। क्या टाइटल? मोस्ट लकीस्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला ज्ञान सागर है, वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में हैं, उनके साथ हमारी भेंट है। अब बाबा देखो कितनी अच्छी भेंट कर रहे हैं कि तुम तो चैतन्य ज्ञान सूर्य हो, वो तो स्थूल है, उनके साथ हमारी भेंट है, तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना कि कौन बना रहा है, फिर बाबा टाइटल भी देते हैं, नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा तो ऊपर है ना, ज्ञान चंद्र सूर्य चंद्रमा यहाँ है, लेकिन जो स्थूल है सूर्य चंद्रमा सितारे वो तो ऊपर है आकाश के, वो यहाँ नहीं है, वो तो ऊपर है, वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ, ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ ही बनना है। तुम जानती हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदान पुरुषार्थ पर है, हम माया पर जीत पाने के वारियर्स है। फिर दूसरा टाइटल और टाइटल कि माया को जीतने वाले वारियर्स हैं। जो लोग वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हट आदि करते। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, बाबा को एक बात अच्छी नहीं लगती। बाबा को कहते बाबा मेरा मन नहीं लगता, तो बाबा ने कहा तुम्हारा आया क्या मन। अब एक मुरली बाबा ने कहा ना, मेरा आया कहाँ, ये तो बाबा को दे दिया है। अपने मन को कंट्रोल के लिए क्या करना है, स्वस्थिति के पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते वो लोग तो ऐसे कहते हैं ना, वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हट आदि करते हैं। तुम तो हट योग आदि कर न सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी। हठ योग भले फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो हठ योग इतना हार्ड करते, बाबा कहते वो करने की जरूरत नहीं है। भले शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ भी छोटा मोटा करो, वैसे करो, कर सकते हैं, लेकिन वो हठ योग उल्टा लटकना ये करना वो तो बच्चों को नहीं करना है। तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी, सिर्फ कहते हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके कि मुझे याद करो मैं लेने आया हूँ। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, भले अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह न सके। ईश्वर है रास्ता बताएंगे, लेकिन मैं गाइड हूँ मैं ले जाऊंगा ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। भले अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सवित्री की कहानी है ना, सत्यवान सवित्री की कहानी सुनी है। कितने दिनों तक वो तपस्या करती रही, हट करती रही कि आखिर उसका वापिस आए आत्मा। वो तो शरीर की बात है। बाबा की जी सत्यवान सवित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुख ही होती थी। तुम तो खुश होते, वो दुख करते हुए क्यों गए। अब बाबा कहते जाते हैं तो हम जा रहे हैं तो खुश होते हो, तुम तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे। जानती हो हमारा बाबा आया हुआ है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते भी हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ, वो आता है सबको ले जाता हूँ। कहते भी हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, यमदूत के लिए कहानी सुनाते ना, यमराज यमदूत आए वो एक को ले गया, लेकिन बाबा तो कहते मैं सबको ले जाता हूँ क्योंकि महाकाल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सबको ले गया था। ऐसा काल नहीं है, वो गाइड बन करके बहुत प्यार से लेके गया। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सबको ले गया था। साजे सजनों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के, पहले बाबा ने कहा इस धरती के कौन हो लकीस्ट, सूर्य चंद्रमा और ज्ञान सितारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। और फिर बाबा बता रहे हैं तुम बच्चे स्वर्ग के भी सितारे हो, क्योंकि वहां तो सदा चमकते रहते हो। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नरक के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है, बच्चे छोटे होते ना कहते ये तो स्टार है, सितारा है। सितारे बच्चों को कहा जाता है, लकी सितारे अब सुनो और बात, लक्की सितारे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं, तुमको दादी की मिल्कियत मिलती है, खान बड़ी जबरदस्त है। किसी को धरती से थोड़ी चीज मिल जाए तो कितना खुश होता है। बाबा कहते ये इतनी जबरदस्त खान है, जितना भी लेना चाहो ले सकते हो, खान बड़ी जबरदस्त है और ये खान एक ही बार निकलती है। बाकी खाने तो कितनी निकलती रहती है ना, वह खानियां तो बहुत है निकलती रहती हैं। कितनी खानियां, कोई कहां पर खुदाई करता कुछ ना कुछ मिल जाता, ये मिला वो मिला। बाबा कहते वो खानियां इतने खुदाई करते ही रहते हैं, वह खानियां तो बहुत है निकलती रहती है, कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अभी कहां बैठे हैं आप सब? बाबा कहते खान पर बैठे हूं। इतनी बड़ी खान है जहां पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है अविनाशी ज्ञान रत्नों की, वह किताब तो बहुत है परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बहुत किताबें हैं, कितनी ज्ञान किताबें हैं, लेकिन पढ़ते रहते हो थोड़ी समझते हैं कि हम रत्न पा रहे हैं। ये ज्ञान जो है, एक एक ज्ञान का वर्षन जो है लाखों करोड़ों की वैल्यू का है, रत्न है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते, देखो हर एक अपनी अपनी झोली को देखे कितने भर गए हैं। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फक्र भी होता है, खुशी भी रहे कि बाबा हमको क्या क्या देते हैं, हर एक को फक्र भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। दुनिया में कोई कोई दुकान ऐसी होती है अच्छा धंधा होता है तो उसका बहुत नाम होता है, लोग और भी ज्यादा जाते रहते हैं। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हो तो वारिस भी बना रहे हो। यहाँ से ज्ञान रत्नों की झोली भरकर फिर जाकर दान देना है। बाबा हमेशा कहते थे आओ बाबा के घर में ज्ञान रत्नों से झोली भरो और फिर जाओ जाके दान करो। कभी कभी कई बच्चे कहते थे बाबा हमको यही रहना, बाबा कहते थे नहीं, यहाँ से रिफ्रेश हो, बादल भर के जाए, बरस करके फिर खाली होकर के दोबारा आओ, फिर आकर के भरो फिर जाओ। तो बाबा कहते ज्ञान रत्नों की जो ले रहे हो तो जाकर के दान करो। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान करना है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वे समुन्दर नहीं जो दिखाते हैं कि रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते। उस समुन्दर का बताते हैं, समुन्दर मंथन किया तो बहुत बहुत ज्ञान रत्नों के बहुत बहुत थालियां, रत्नों की थालियां भर भर के देते थे। बाबा की तो समुन्दर मंथन नहीं है, ये ज्ञान मंथन है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वे समुन्दर नहीं जो दिखाते हैं कि रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से तो रत्न मिलते ही नहीं है, ज्ञान रत्न थोड़ी मिलते हैं, ये ज्ञान रत्नों की बात है। जाना अनुसार फिर तुमको ज्ञान रत्नों की खानियां मिलती हैं। वहां ढेर हीरे जवाहरात होते हैं, फिर जिससे भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाए। सचिव में भी रत्नों की खानियां बहुत, फिर द्वापर में आकर के बहुत मंदिर बनाते, हीरे जवाहरात लगाते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, ये ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं, वहां ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते, सच्चू में इतने हीरे जवाहरात थे, सब कुछ था। फिर अर्थक्वेक होते सब नीचे चला गया। फिर द्वापर के बाद फिर जैसे खुदाई करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी खुदाई की, थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं अनेक महल बनेंगे सतयुग में। यहां भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। कलयुग में राजाओं की कितनी कंपटीशन होती थी, इसने ये महल बनाया, मैं इससे बड़ा महल बनाऊं, इसने ये वो हीरे जवाहरात लगाए, मैं इसे और कीमती हीरे जवाहरात लगाऊं। आजकल भी ऐसे कई अमीर लोग हैं, इसके पास है तो मेरे पास भी है, तो कंपटीशन करते रहते ना। तो बाबा कहते सच्चे में कंपटीशन नहीं है, वहां पर तो ऑटोमेटिकली स्टेटस अनुसार ही मिलता है। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले जैसे मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। फिर पूछते ना सच्चू में, कैसे मकान बनेंगे, कैसे बनेंगे महल, कैसे बनेंगे। तो बाबा ने राज बता दिया कि कल पहले जैसा बनाया था वैसे बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे, साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। यहाँ साइंस बोलते हैं, हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। बाबा कहते वहां की भाषा ही अलग है, वहां साइंस अक्षर ही नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है, दिल्ली में है ना एक विज्ञान भवन। तो फिर यहाँ पर भी जब कोई बिल्डिंग बनती थी तो ज्ञान के आधार से दादियां नाम रखाती थी, तो यहाँ पर क्या नाम रखा है, ज्ञान विज्ञान भवन। अपनी एक बिल्डिंग बनी तो एक का नाम दादी ने रखवाया राजयोग भवन, दूसरा का नाम रखवाया ज्ञान विज्ञान भवन, तीसरी का नाम रखा कुंज भवन, और फिर नाम रखा सुख नाम। तो ये सब नाम जो है कैसे रखे हुए, बाबा की मुरली से ही है। इंद्रप्रस्थ आदि जो भी नाम है, लाइट हाउस माइट हाउस, ये सब बाबा की मुरली की प्वाइंट के ही नाम रखे हुए है। तो बाबा कहते आजकल तो विज्ञान भवन नाम भी रख दिया है। विज्ञान अक्षर योग के साथ लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े महल बनेंगे। आप बताओ कितना अच्छा राज कि वो जो बनाने वाले हैं उनकी बुद्धि इतनी क्लियर होती है, कोई उलझन नहीं, फटाफट। यहाँ तो एक मकान बनाना एक एक इंच को नापते रहते हैं, इधर नहीं बनाओ उधर नहीं बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। वहां तो इतने नॉलेजफुल होते हैं, ऑटोमेटिकली सहज रीति से बनाते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई भी ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां पर शरीर छोड़ने के टाइम कोई दुख नहीं है, उनको पता है कि शरीर पुराना हो गया, अब इसको छोड़ करके दूसरा लेंगे। वहां भी समझते हैं कि ये पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। नया शरीर ले तो बहुत ही अच्छा है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई ये नहीं है, गाया जाता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक अधर्मों का विनाश कैसे होता है सो तो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है, बाबा आए ही तब थे। फिर बाबा कहते कब बाबा आए थे, बाबा कहते मैं आया भी तब था जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, जब देवीता धर्म लोप होता तब मैं आता हूँ। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था, फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक अधर्मों का। तो अभी अनेक अधर्म है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, ऐसी तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या ये ब्रह्मा कुछ नहीं बतलाते? अब बाबा बैठा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है और ये पहला आदि रतन है, ये भी बहुत कुछ बता सकता है। बाबा जो सुनाते, पहले तो ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, वो तो सब कुछ सुनाते हैं। तो शिव बाबा कहते ऐसा मत सोचो ये कुछ नहीं बतलाता, मैं भी बतलाता हूँ, ये भी बतलाता है। कभी कभी साकार में बाबा अपनी हिस्ट्री भी तो मुरली के टाइम सुनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है। क्या पाठ है? शास्त्रों में गायन आते ना कि ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा ने जब मत बांटी तो वो बताते ना, कहानियां कितनी आती हैं। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं नहीं सुनते ना, कहते तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, जब ब्रह्मा ने बुद्धि बांटी थी तुम कहाँ थे उस समय? तो बाबा वो भी तो ब्रह्मा का गायन है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ही समझाते, क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है। श्रीमद ब्रह्मा की भी गाई हुई है, कृष्ण के लिए तो श्रीमद कहते नहीं है, वो तो वहाँ का, वहाँ तो सब श्री है, उनको मत की दरकार ही नहीं है। सत्युग में सब श्रेष्ठ है, क्या करेंगे मत लेकर के, देने की दरकार ही नहीं, उनको तो मत की दरकार ही नहीं है। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जो किसने दी होगी, देवताएं हैं श्री मत वाले, श्री मत से ही स्वर्ग बनता है, आश्री मत से नरक बनता है, श्री मत है शिव की। ये सब बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा की ये सब दुकान है, जितने भी सेंटर्स हैं क्या है, शिव बाबा की दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं, चलाने वाला बाबा है, कराने वाला बाबा है, बच्चों को निमित बनाया है कि निमित बन के चलाओ। हम बच्चे चलाने वाले हैं, जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है हूबहू जैसी दुकानदारी में होता है, परंतु ये व्यापार कोई विरला करे। वो व्यापार तो कोई कोई करते हैं, लेकिन ये व्यापार ऐसा पावरफुल है कोई मुश्किल से ही करता, कोई विरला ही करे। व्यापार तो सभी को करना है, छोटे बच्चे भी ज्ञान योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग तो राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर के याद करना। यहाँ बाबा कहते हैं ज्यादा नहीं बोलना है, शांति से सुनो। वह देते हैं स्थूल मंत्र, वह देते हैं स्थूल मंत्र, ये है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। हमारा मंत्र कितना सूक्ष्म है, हमारी याद इतनी सूक्ष्म है जो किसको भी पता नहीं पड़ता है। ये अति सूक्ष्म याद है, सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है, आवाज भी कुछ नहीं करना पड़ता है। बाबा को कभी भी अच्छा नहीं लगता था, योग के टाइम आवाज करते थे या फिर योग के टाइम बड़े लाउड वाले गीत बजा देते थे, बाबा कहते थे बिल्कुल साइलेंस में बैठो, आवाज भी कुछ नहीं करना पड़ता है। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी से याद में रहते, इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। बाबा से बातें करते करते बाबा के पास चले जाएं तो कितना अच्छा अंत होता है। कई बच्चों के उदाहरण है किस प्रकार से बाबा को याद करते करते पंछी बन के उड़ गए, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें। सभी को वह बता रहे याद की प्रैक्टिस करते रहें। सभी को कहो बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो तो अंत मति सो गति होगी। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करने। परहेज कौन कौन से? संग दोष है, भोजन की भी परहेज है और मर्यादाओं की भी परहेज है। तो बाबा कहते इन बातों का परहेज भी यहाँ पर ही करना है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सत्व प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। भोजन भी सात्विक और सात्विक के साथ साथ बाबा की याद में रह करके खाने का। बनाने वाले तो बाबा की याद में प्यार से बनाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा बल मिलता है, मदद मिलती है। तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन भी सात्विक, बाबा भोजन भी सात्विक कहते हैं, चलन भी सात्विक और बोलना भी सात्विक। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं ना, तो बाबा कहते बोलो भी ऐसा जो उसको ऐसा महसूस हो कि हमें भी वैसा ही करना है। तो चलन भी सात्विक, बोलना भी सात्विक। ये है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, प्यों प्यों बोल सदा अनमोल। ये बहुत पुराना गीत है, ये पहले शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना में उसमें ऐसे कई पुराने पुराने गीत चलते थे, वो ये भी गीत था, प्यों प्यों बोल सदा अनमोल। अभी चौथा और टाइटल मिल रहा है। पहले बाबा ने क्या बताया, लक्कीस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, लक्की स्टार। अभी बाबा कह रहे हैं तुम वो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। ये कम जादूगिरी नहीं है, ये कोई कम जादूगिरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है परंतु निराकार तो बोल नहीं सकते हैं। अब रूप बसंत है लेकिन बोलने के लिए तो शरीर चाहिए ना। बाबा भी रूप बसंत है परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, आत्मा तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते, रूप बसंत भी हो और बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना। बाबा को कह देना बाबा सब कुछ आपका है, फिर बाबा कहते क्यों मन से ममत्व रखते हो, क्यों तन से ममत्व रखते हो, फिर ममत्व नहीं रखना। अब अपना कुछ नहीं समझना है। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते। बाबा लेने वाला नहीं है, बाबा को देंगे बाबा लेकर के क्या करेगा। बाबा को बताते ये आपका है तो बाबा क्या कहते हैं इसको आप ही संभालो, निमित्त बन के संभालो। तो बाबा कहते हैं ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में देखा है ना कैसे वो जोर से मारता वो मोड़ता, अपनी संभाल भी करते हैं, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया। जैसे कि अब सुनो काम विकार में गए तो बाबा क्या कहते हैं जैसे कि चौथी मंजिल से गिरा तो क्या हाल होगा। कल भी बाबा कह रहे थे ना हाथ गोभी से घुटने गड़ियां सब टूट जाती हैं। काला मुंह कर दिया जैसे कि चौथी मंजिल से गिरा, क्रोध किया तो थर्ड फ्लोर से गिरा। काम में गए तो चौथी मंजिल से किया गिरे और क्रोध किया तो थर्ड फ्लोर से गिरा। क्रोध किया तो थर्ड फ्लोर से गिरा, ये बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो, बच्चे टेप के लिए मांग करते रहते। शुरू में पहले मुरली चलती थी तो मुरली टाइप होकर के, प्रिंट होकर के सेंटर्स पर जाती थी, और सेंटर्स पर जाती थी कईयों को तो जल्दी मिल जाती, दूर दूर तो 15 दिन महीना भी लग जाता था। फिर विदेश में एक भाई था जिसको आया कि वहाँ टेप थी, तो टेप नई नई निकली, तो एक बाबा का बच्चा विदेश से टेप लेकर के आया, तो यहाँ पर वो टेप में मुरली रिकॉर्ड होती थी, तो वो पूरी हूबहू रिकॉर्ड होती थी, हूबहू सुन सकते थे। फिर जैसे पहली पहली टेप आई, टेप मशीन आई, तो बाबा ने क्या किया, विश्व रतन दादा को वो टेप मशीन दिया, और वो टेप मशीन लेकर के एक सेंटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे वो जगह जगह जाकर के वो मुरली, बाबा की साकार मुरली, साकार आवाज सब सुनते थे। फिर उसके बाद फिर कभी कभी ओम प्रकाश भाई भी लेकर के जाते थे। फिर ये जब टेप आई एक, तो फिर सबने कहा, फिर दो चार टेप मशीन और आई, तो फिर सब डिमांड करने लगे कि हमारे पास टेप मशीन हो ताकि हम सभी बाबा की हू बहू आवाज सुन सके। फिर तो धीरे धीरे टेप मशीन सभी सेंटर्स पर आने लगी और बाबा की आवाज सुनते भी थे। अभी पुरानी टेप मशीन भी कई हैं और कई आवाज भी रिकॉर्डेड तो हैं, बाबा की सुनते भी रहते हैं हम लोग। तो बाबा को बता रहे हैं, ये बहुत समझाने की बात है। अब देखो, बच्चे टेप के लिए मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, टेप मशीन भेज दो। अब एक आध है तो कैसे, फिर बाबा ने प्रबंध कराया था, फिर सभी सेंटर्स पर भेजा गया था, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली तो सुने। ये भी प्रबंध हो रहा है, बाबा हर बच्चे की आश को पूरा करते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे धीरे रखो, ये भी प्रबंध हो रहा है, बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं, टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। कई कई बच्चे ऐसे भी होते थे जो कर सकते थे, तो बाबा ने उनको कहा कि तुम खरीदोगे तो अनेकों का कल्याण हो जाएगा। फिर ऐसे कईयों ने खरीद खरीद करके सेंटर्स को दिए थे, कई सेंटर्स ने खुद खरीदा, कईयों ने किसको सहयोग दिया। तो बाबा कहते हैं, जैसे कॉलेज खोलते हैं तो उसको अच्छी विद्या मिलती है, ये भी ज्ञान रत्नों का दान करने की बात है। बाबा कहते हैं, जैसे मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं, टेप मशीन खरीद करूं तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है, अपने खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है, बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों के निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है, और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान, नष्ट महाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले समिति स्वरूप भव। नष्ट महाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले समिति स्वरूप भव, जो सदा एक की स्वृत्ति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर समृद्धि स्वरूप रहते हैं वे सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा हैं उन्हें कभी कमाने में धन संभालने में किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती। रहता नहीं इधर कमा ले इधर कमा ले इधर इकट्ठा कर ले उधर इकट्ठा कर ले। तो बाबा कहते हैं जो नष्टो मोहा हैं उन्हें कभी कमाने में धन संभालने में किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो सदा बेफिकर। स्लोगन क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। आज का अव्यक्त इशारा हम सुनेंगे। आज है 2 तारीख आज का अव्यक्त इशारा। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मनियां अपनी संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मणि कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी अभी हमारे बीच में एक छोटी सी बालिका तैयार होकर के आ गई है और वो जैसे कान्हा के लिए कहते हैं ना, कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो कभी भी कहीं से भी आ जाता है कृष्ण की ड्रेस डाल करके।